سبق شروع کرنے سے پہلے آج کی آیات کو ہم ایک اسٹریچ میں دیکھیں گے. آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر کسی کو بھی اجازت نہیں کہ اس کو تبدیل کرے. اس آیت کو ہم حضرت زید اور حضرت زینب کے نکاح کی روشنی میں دیکھیں گے, اور یہاں سے آپ سورت کا وہ حصہ دیکھیں گے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر لگائے گئے الزامات اور بہت کچھ. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے پورے سبق کا اگر ایک لفظ میں ٹاپک کو رکھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ذات, آپ کا گھرانہ, آپ کے اوپر کیا لوگوں نے کیچڑ اچالے, بہت ڈیٹیل ہے حد سے زیادہ. لیکن ہم کوشش کریں گے اپنے وقت کی وسعت کے اعتبار سے اس کو دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم آج کے اس موضوع میں ختم نبوت پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب دوبارہ کسی نبی کی ضرورت ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی کے دور سے لے کے آج تک آپ کے بعد کس کس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کا احادیث کی روشنی میں کیا انجام ہے. پھر ذکر کی حقیقت کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ, بعثت نبوی کا مقصد یعنی آپ کو کیوں بھیجا گیا. پھر آج ہی کے سبق میں ہم آپ کی چار بنیادی حیثیتیں بھی پڑھیں گے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ سبق ایک ہفتے میں پورا ہونا چاہیے, جتنا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور خاص طور پہ آج کے حالات میں جو امت کا معاملہ ہے اور دشمن آپ کے بارے میں جو سوچتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آج کے سبق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تخصیصات یعنی خاص چیزیں, ایکسیپشنز کہہ لیجئے یا اسپیشلائزیشن کہہ لیجئے, جو امت کو نہیں لیکن نبی کو حاصل ہیں, اور اسی طرح لائبلٹیز, دو باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ چیزیں عام لوگوں سے بڑھ کر ذمہ داریوں کی صورت میں ہیں, جس میں آپ کو اپنی بیویوں کو اب طلاق نہ دینے کا اختیار ختم ہو جانا, یعنی اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا اختیار ختم کر دیا گیا, وہ آج کے آیتوں میں ہم پڑھیں گے. ہر مرد دے سکتا ہے اپنی بیوی کو طلاق, لیکن واقعہ تحریر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اختیار اب واپس لے لیا تھا کہ اب آپ اپنی ان بیویوں کو نہیں چھوڑ سکتے. پھر کوئی بھی مرد کسی وقت بھی اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ کر یا اس سے نہیں بنتی طلاق کے بعد نیا نکاح کر سکتا ہے, لیکن اللہ کے نبی کا یہ اختیار سلب کر لیا گیا تھا کہ اب ان بیویوں کے بعد اب آپ کوئی اور شادی نہیں کریں گے. پھر اسی طرح سے کچھ خاص چیزیں, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کی لائبلٹی تھی اس طرح آپ کو کچھ پریولیجز بھی تھی. ہر لیڈر کے پاس دوسروں سے بڑھ کر کچھ پریولیجز ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے, ورنہ تو پھر فرق ہی نہیں رہتا. تو اس میں ہمیں کچھ پریولیجز مین کچھ بینیفٹس یا کچھ ایکسٹرا تھنگز جو باقی امت کو نہیں, مثلا چار سے زیادہ شادیوں کا اختیار, اور وہ اس کا ذکر بھی ہے کہ آپ کے ساتھ یعنی کچھ خاص معاملات ہیں, اس کا ذکر ہم پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان آیات کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو کہاں تک لیا. تو ہمارا یہ سبق جو ہے یہ آیت نمبر 36 سے لے کر یعنی 36, حالانکہ یہ پچھلے سبق میں پڑھی لیکن ہم یہیں سے لیں گے, 36 سے لے کر 52 تک ہے. آئیے اب آیتوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کوشش کریں گے کہ بہت سارے ٹاپک چونکہ آج کے سبق میں, تو ہم ایک ایک ٹاپک کی آیتوں کو اکٹھا خلاصے کے طور پر کرتے جائیں جو بات اس میں سمجھ آئے, اور باقی چیزوں کو پھر ہم اپنے ساتھ ساتھ سبق میں لیں گے, اس پہ واقعے کے بعد ڈسکشن کی صورت میں. دیکھتے ہیں آیت نمبر 36 کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما کان لمومن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم. اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں. یہاں سے ہم سبق شروع کر رہے ہیں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت زید کے لیے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا پیغام بھجوایا گیا تھا, اور حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن حجش اسے منظور کرنے پر آمادہ نہیں تھے. لیکن جو ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ نے ایک چیز سوچ لی ہے تو آپ اس پہ نو کیسے کہہ سکتے ہیں, تو وہ فوراً تیار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں بتا دیا کہ اگر اس بات کو سن کر, یعنی نبی نے جب پرپوز کیا زینب کو زید کے لیے, تو اگر یہ نافرمانی کرتے یعنی ان کے بھائی یا زینب, تو کیا ہو سکتا تھا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ تو صریح گمراہی میں پڑ گیا. یعنی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے اور نبی کی زبان مبارک سے وہ بات نکل جائے، پھر لوگ اس کو نہ مانیں، نافرمانی کریں، تو پھر ان کے پاس نہ دنیا میں کوئی چیز ہے نہ آخرت میں. اب یہ کون تھے دونوں؟ تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے. حضرت زید کون تھے؟ گو کے سبق کے شروع میں ہی بات چلتی آ رہی ہے، لیکن یہاں چونکہ اب خاص طور پہ وہ بات ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے اس وقت میں غلامی کا رواج تھا، غلام بکا کرتے تھے. عام طور پر تو غلام وہ تھے جو خاندانی غلام ہوتے تھے، نسل در نسل بکتے تھے، غلام کا بچہ بھی غلام ہوتا تھا. ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں ایک کمتر درجے کے شہری کی حیثیت حاصل تھی. صرف سمجھانے کے لیے، جیسے آج کے دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں کمی کمین ہے یا فلاں، یعنی اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کے تصور میں تھا. لیکن بعض لوگ خاندانی طور پہ بہت مضبوط ہوتے تھے، لیکن ان کے بچے اغوا ہو کر کڈنیپ کڈ کی صورت میں یا کسی اور حادثے کی صورت میں غلام بن جاتے تھے، اور کوئی بھی شخص ان کو خرید لیتا تھا اور آگے بیچتا تھا. تو گویا کہ ان کے اندر اعلیٰ نسب تو پایا جاتا تھا، لیکن بظاہر وہ غلام لگتے ہیں. حضرت زید کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. زید بن حارثہ تھے، بچپن میں اپنے ماں باپ سے جدا ہوئے، مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتے بکاتے مکہ میں آ گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے پہلے ان کو خریدا تھا اور آپ سے نکاح کی صورت میں آپ کو تحفے میں دے دیے گئے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اوقاص نام کا ایک بازار ہے، وہاں سے اللہ کے نبی نے ان کو خریدا تھا. بہت چھوٹی عمر کے تھے، ان کو جب خریدا پھر آزاد کیا، اور عرب کے عام رواج کے مطابق ان کو منہ بولا بیٹا بھی کہہ دیا، اور ان کا نام بھی زید بن محمد رکھ دیا. ان کی پرورش کی. مکہ والے ان کو زید بن محمد کے نام سے پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے، تو ہم اسی صورت کے ابتدائی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ منہ بولے بیٹے کی حیثیت کوئی بھی نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ادعوہم لآبائہم. تو جب یہ حکم آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دوبارہ زید بن حارث کہا، اور انہوں نے اپنے باپ کا نام اتار دیا. لفظ زید ابھی تو ہم صرف تفسیر میں پڑھ رہے ہیں نا، ابھی اسی صورت کے آگے ہم آیتوں میں لفظ زید بھی پڑھیں گے، تو ذرا حضرت زید کے بارے میں بھی تو تھوڑی سی بات ہو جائے. پہلی بات دیکھیں کہ پورے قرآن پاک میں صرف اور صرف انبیاء کے نام آئے ہیں، یہ ایک تخصیص ہے. کسی بھی غیر نبی کا نام نہیں آیا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے شخص کا نام نہیں آیا، تذکرے موجود ہیں، لیکن زید کا نام آیا ہے. یہ ان کی خاص بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بڑے لاڈلے تھے، چونکہ عمر میں بیٹے کی طرح تھے، آپ ان کو حضرت حسن اور حسین کی طرح چاہتے تھے، بہت ہی محبت تھی. ان کو مدینہ میں لوگ حب رسول کہتے تھے. حب کہتے ہیں پیارا، لاڈلا، بلاوڈ آف پروفٹ. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی فرمائش بھیجنا چاہتے اور ڈر لگتا کہ پتہ نہیں آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، تو حضرت زید کو آگے بھیجتے تھے. معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی عورت نے چوری کی تو لوگوں نے حضرت زید کو بھیجا کہ نبی سے کو کس کا ہاتھ نہ کاٹیں، تو آپ غصے میں آئے اور آپ نے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اعزاز دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا. اللہ کے نبی کی کوئی نرینہ اولاد اس عمر تک نہیں پہنچی تھی کہ آپ اس کی پرورش کرتے. دودھ پیتی حالت میں بچے فوت ہو گئے، آگے جہاں آیت آئے گی وہاں ہم تھوڑا سا ذکر کر دیں گے. تو حضرت زید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کا نام قرآن میں رکھا، اور اس پہ ایک بڑی دلچسپ بات کسی نے کہی کہ چونکہ زید نے اللہ کے حکم کو مانا کہ خود کو زید بن محمد کی بجائے دوبارہ زید بن حارثہ کہلوایا، کیونکہ ماں کان علی مومن ولا مومنت، پہ عمل کیا، تو اللہ نے اس کا انعام ان کو یہ دیا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام قرآن میں. پھر آپ ایک اور مزے کی بات دیکھیے، لفظ زید لکھیے ذرا اپنے پاس، ز یا دال، تین لفظ بنے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک کا ہر لفظ پڑھنے پر کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو زید نام بولنے پر ہر دفعہ 30 نیکیاں ملتی ہیں. फिर इनकी एक और ख़ास बात क्या थी, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कभी किसी लश्कर में इनको भेजा तो अमीर लश्कर ही बनाया, यानी इनको लीडर बना के भेजा, कभी मातूब बना कर नहीं भेजा। हत्ता कि एक बुक है ये डॉक्टर फजल अली साहब के लश्कर उसामा के नाम पर, लश्कर उसामा की वापसी, पढ़ के देखिए, बड़ी दिलचस्प बुक है, कहानी की सूरत में है। तो इनको लीडर बनाया गया था 17-18 साल की उम्र में, और इस ग्रुप के अंदर अबू बकर उमर जैसे सहाबा को भी डाला गया था, जस्ट लाइक फॉलोअर्स की सूरत में। ये अलग बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी जब शिद्दत पकड़ी तो ये लश्कर वापस आ गया था, और फिर आपकी वफात के बाद जब दोबारा चलने लगा तो सहाबा में इख्तलाफ हो गया कि छोटे से बच्चे को लीडर बना के भेज रहे हो। तो कुछ ने कहा कि हाँ, जब नबी ने कहा था तो ठीक होगा, कुछ ने कहा नहीं, नबी की जिंदगी में बात और थी, अगर ये कोई गलती करते तो हम संभाल लेते, अब क्या होगा। लेकिन अबू बकर फिर वहां चट्टान बन के खड़े हो गए कि जो नबी का फैसला मैं नहीं बदलूंगा, क्योंकि माँ कान अली मोमिन वला मोमिनतिन इदा कदल्लाह व रसूल। इसको कोड वर्ड बना लें सूरत अल अहज़ाब पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी का, खुशियों से भर जाएगी आपकी जिंदगी। जब मेरे अल्लाह ने मेरे लिए ये डिसाइड किया तो मैं क्यों चेंज करूं, मैं क्यों दुखी, मैं क्यों परेशान। और बिलीफ में अगर इस एक असूल पे अमल कर लें, आपकी दुखों भरी जिंदगी खुशियों में भर जाएंगी। अमूमन हम अल्लाह के फैसले क्या कबूल नहीं करते, बेटा नहीं है, इज़ा ख़दा अल्लाह व रसूल, कोई बात नहीं अल्लाह का फैसला, बेटी नहीं है, इज़ा ख़दा अल्लाह व रसूल अल्लाह का फैसला, शादी नहीं हो रही अल्लाह का फैसला, शादी हुई तो टूट गई तो अल्लाह का फैसला, फिर टूट गई तो अल्लाह का फैसला, सेहत नहीं है बीमारी है तो अल्लाह का फैसला, बच्चे ना फरमान है तो अल्लाह का फैसला। मैं कहती हूँ गमों को सामने रखें, दुखों को, बीमारियों को ढेर लगाए, फिर उसके आगे कहे कि इदा कदल्लाह व रसूलहु अमरन, ये मेरे रब के फैसले हैं। ये जिसको मैं और आप नसीब कहते हैं ना, ये अल्लाह के फैसलों की पोटली है। अल्लाह को वो लोग बड़े प्यारे लगते हैं जो अल्लाह के हर फैसले को कबूल करते हैं। हम कहते नहीं, चूंकि मैंने सोचा तो यही होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ, बिकॉज बिकॉज बिकॉज, हमने कह दिया तो ये होना था, मैंने कह दिया बिकॉज आई टोल्ड यू, बिकॉज आई टेल यू, बिकॉज आई नीड दिस, आई लाइक यू, या आई लाइक नीड, सब खत्म हो जाता है जब बंदे को अपनी औकात दिखती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि इनको आज़ाद करके, इनको बेटा बना के तरबियत करने में एक और इस्लाम की खूबी भी दिखती है कि इस्लाम ने गुलामी को कैसे ख़त्म किया। आज हम अपनी घर की मासियों या घर के जो बच्चे होते हैं मुलाजिम, उनके साथ वो सलूक नहीं करते जो हज़रत ज़ैद के साथ नबी सल्लम ने किया। तो यहाँ से इस्लाम का मिजाज दिखता है कि लोगों को ग़ुलाम रखने की बजाय आज़ाद रखना चाहता है। और इसमें बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं कि अजर का फैसला उस शख्स के लिए जो किसी को आज़ाद करे और फिर उसको रोके। अब ज़ैद बड़े हुए, इमेजिन करें ना, किसी का बेटा बड़ा हो गया तो नबी को भी उनकी शादी की फिक्र थी। अल्लाह के नबी ने उनकी शादी के लिए अपनी फुफो की बेटी हज़रत ज़ैनब बिनते जहश या हजश, दोनों तरह से आता है, इनका इंतखाब किया, यानी हज़रत ज़ैनब को प्रपोज किया कि इनसे निकाह हो जाए। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता मांगा, जैसे लड़के का बाप मांगता किसी की बेटी के लिए। अब चूंकि हज़रत ज़ैद के नाम पर गुलाम का ठप्पा था, और हज़रत ज़ैनब और उनके भाई अब्दुल्ला बिन हजश या जहश जो थे ये ख़ानदानी भी थे, कुरैश थे, नबी सल्लम के फूफीजाद थे, आला नसब, सैयद कह लीजिए, कुरैशी कह लीजिए, अरब कह लीजिए, तो इनके दिल में थोड़ा सा मलाल था कि ये क्या रिश्ता मांग रहे हैं, मैं हम कैसे करें। हाँ, मोहम्मद का अपना बेटा होता तो सर आंखों पर सल्ला सल्ला, उस पर ही आयत उतरी, माँ खान अली मोमिन वाला मोमिनातिन वाली आयत जो हम पढ़े हैं कि जब अल्लाह ने कह दिया तो फिर क्या इख्तियार है। जो ही ये आयत उतरी तो हज़रत ज़ैनब और उनके भाई दोनों ने अपनी बात पीछे की, निकाह किया, निकाह हो गया। इस निकाह का महर खुद नबी सल्लम ने अपनी तरफ से दिया 10 दीनार, तकरीबन 4.25 तोले सोना, यानी 3.75 तोले सोना आपने खुद दिया, और 60 दिरहम, तकरीबन 16.25 तोले चांदी, ये नाक महर में दिया। इसी तरह आपने महर में एक जानवर के ऊपर जितना वजन आ सके, यानी एक बार एक जानवर कह लीजिए, गाड़ी कह लें आज के दौर की, फिर एक पूरा लेडीज जोड़ा, यानी दुल्हन के लिए क्या लेकर के, एक जोड़ा, और 50 मुद आटा, तकरीबन 43 यानी 43 सेर आटा दिया, और 10 मुद यानी 8.5 सेर 3 माशे खजूरें दी। कितना अच्छा मेहर दिया आपने, बेटे के शौक चाव पूरे किए ना शौक से। अब ये सारा मैं आपको क्यों खोल के लिखा रही हूँ, क्योंकि इस पे आज जालिमों की जुबानें बहुत बोलती हैं, इतना गंद बोलते हैं हज़रत ज़ैनब के नाते से अल्लाह के नबी पर, वो आपको ये बाद में बातें याद आएंगी तो खुद ही पता चलेगा। आपने इनका निकाह कर दिया, अब हुआ क्या, निकाह हो गया। ये आयत उसके साथ है। बास कहते हैं कि इसी तरह के दो वाक्यात और भी मदीना में हुए थे इस आयत की रोशनी में। एक तो जुलबैब का वाक्य, जुलबीब भी कहते हैं और जुलबैब भी कहते हैं, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन भी है। और वो क्या है कि गरीब थे, अंसारी सहाबी की एक बेटी के पास अल्लाह के नबी ने इनका रिश्ता भेजा, तो माँ बाप हेजिटेंट थे, काला हबशी गरीब, खानदान भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, गुलाब भी है। तो उस वक़्त भी कहते हैं कि इसी आयत को सामने देखकर उस बच्ची ने कहा था कि अब्बा जान अगर अल्लाह के नबी ने भेजा तो आप इनकार ना करें, अगर ये काले हैं तो वो तो गोरे हैं, और अगर ये दौलतमंद नहीं तो वो तो दौलतमंद है, और इसी तरह की बातें। कि उन्होंने कहा अच्छा बेटा अगर तुम्हारी ये मर्जी है तो करते हैं। तो जब रिश्ता हुआ, अल्लाह के नबी ने उनके लिए वसत रिज़्क़ की दुआ की, और सहाबा कहते हैं कि फिर उस घर में इतनी बरकत थी कि मदीना मुनव्वरा के घरों में सबसे बड़ा उजला और ज्यादा खर्च करने वाला घर जो था वो जुलबैब का। ये दुआओं का असर होता है। हम कहते हैं हम अपनी कोशिशों से खुशियां और नेकियां लेते हैं, वल्लाह ही नहीं, अल्लाह के काम करेंगे तो अल्लाह आपकी गोद में खुशियां डालेगा, और आप जरा इनको पीछे करें तो फिर देखें आपको कितनी आजमाइशों का सामना था, इल्ला माशाल्लाह। ये भी एक बात याद रखिए, बात हो रही है तो यह भी से बता दूं, हमारे यहाँ अमूमन क्या तसव्वुर है कि कुरान सुन्नत के मुताबिक शादी की बहुत अच्छी निभेगी, पता चला कि कुछ अरसे बाद कुछ परेशानी हो गई, बीमारी आ गई, मौत आ गई, हादसा हो गया, शादी टूट गई। दूसरी तरफ लोग गुनाहों के साथ, नाफरमानियों के साथ धन धनाते शादियां करते हैं, कुछ भी नहीं होता, बड़ी कामयाब है। तो इसको बिग क्रॉस लगा दें। आप और मैं अगर ये सोचते हैं ना इज़ा क़द अल्लाह अमरन पे अमल करने से जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी, तो गलत है। अल्लाह चाहे सुन्नत शादियों के बाद भी आजमाइशें ले आए और नाफरमानियों से भरी शादियों के बाद भी खुशियां दे दे, असल फैसला एंड पे जाके होगा। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत मिसकंसेप्शन है, और बाद में लोग रोते हैं हमने तो बड़ी सुन्नत तरीके से शादी की थी, फिर क्या हो गया। फिर क्या हो गया, अल्लाह कहता है कि जब मैंने किया फैसला तो मानो, मेरा और आपका काम क्या है, अल्लाह के फैसलों को दिल की खुशी के साथ मानना। बहरहाल जब जुलबैब से शादी हुई, अल्लाह के नबी ने उनके लिए रिज़्क़ की दुआ की, और फिर वाकई उनके घर में बरकत हुई। बाद में जुलबैब जो थे एक जिहाद में शहीद हो गए, और अल्लाह के नबी ने फिर उनकी तजहीज़ो तकफीन अपने हाथ से की। इसी तरह से एक तीसरा वाक्य भी साज के साथ आता है, उम्मे कुलसूम बिनते उकबा बिन अबी मोईत थी, और उनके साथ भी कुछ इसी किस्म का मामला था। अब आप सवाल करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिश्ता क्यों मांगा, क्योंकि इस्लाम का एक मिजाज है और वह है कफ। कैसे लिखेंगे, काफ फा और वाव, वाव बोलते नहीं, कफ। कफ कहते हैं बराबरी, किफायत करना। इस्लाम में निकाह की एक शर्त है, शर्त से मुराद ये कि पिलर तो नहीं है, रुकन नहीं है, लेकिन इस रिकमेंडेड कि शादी करते वक्त दोनों जोड़े बराबर के होने चाहिए। मसलन आला खानदान है तो लड़की भी आला खानदान की हो, लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी हो, और खूबसूरत लड़का आपका है तो लड़की भी खूबसूरत हो, और सो ऑन। और उम्र का फर्क भी सब कुछ आता है। आम हालात में ये पसंदीदा है, क्यों पसंदीदा, आप देखिए कि बहुत फर्क होता है। आप मिसाल है कि एक इमेजिनेशन में लाएं कि पाकिस्तान में किसी गांव में एक लड़का रहता है, बहुत नेक, बहुत अच्छा भी है, और मतलब वहां के हिसाब से वो खाता पीता भी है, और एक बच्ची हो सकता है कराची कह लें या किसी और उससे भी पौश इलाके की लड़की है, लाहौर की है, वहां की, अब अगर उसकी शादी आप गांव में कर देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दीनदार। लेकिन बाद वक्त क्लैशिंग बातें क्या होती हैं, वो हो सकता है सुबह उठ के देसी घी के पराठे खाते हो और ये वीटाबिक्स खाती है बच्ची, मुश्किल होगी ना। इस तरफ वेस्टर्न शादियां पाकिस्तान में जाती हैं तो सबसे बड़ा मसला ही फूड होता है, आपको पता, कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं, उधर की लड़कियां इधर या उधर के लड़के उधर, इस तरह के हालात हैं, बिग बिग प्रॉब्लम फूड होता है, किसी एक को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, नहीं तो जहन ही नहीं मिलते, ये एक हकीकी बात है ना। इस्लाम चाहता है कि आम जब हालात हैं, जब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस हैं, चॉइस मौजूद है, इसको देखो। अब क्वेश्चन ये है कि इधर तो अल्लाह के नबी ने नहीं देखा, एक गुलाम और एक आजाद का, और गुलाम का कर दिया, तो इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह क्या है कि आम हालात में तो ये अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस रिश्ते के तहत एक बहुत ही पक्की रस्म तुड़वानी थी, और वो क्या थी, मुंह बोले बेटे की बीवी जो होती है उसके साथ निकाह जायज करवाना, जबकि वो तलाक को आगे आयत आएगी तो वह हम देखेंगे। तो लिहाजा ये एक एक्सेप्शनल सूरत थी, और बाज दफा बाज बच्चियां और बच्चे दोनों बहुत ही समझदार होते हैं, वो इन छोटी छोटी बातों को बुनियाद नहीं बनाते। इसका तो ना तो किसी के जन्नत में जाने से कोई ताल्लुक है कि वो देसी घी खाता है, और इससे भी नहीं है कि कोई अगर सिर्फ सीरियल खाता है तो वो जहन्नुम में जाएगा, लेकिन बहरहाल एक बात मौजूद है कि अल्लाह ताला ने इस तरह की बात रखी है। लेकिन आम हालात में अमूमन ये होता है, मैं अक्सर लोगों को ये चीज़ एडवाइस करती हूँ जब भी लोग रिश्तों की बात पूछते हैं, कई जगह ऐसे इश्यूज चलते हैं, तो एक असूल कहती हूँ वरना अल्लाह नोज दी बेस्ट, के असल तो तरबियत है। वेस्ट में रहते हुए आप तरबियत अच्छी कर लें तो वो बच्चे बहुत अच्छे एडजस्ट हो जाते हैं पाकिस्तान में जाके, और अपोजिट भी इसका होता है। लेकिन आम तौर पे मैंने देखा है कि जब वेस्टर्नाइज तरीके से बच्चियों को पाला गया होता है ना, तो वो बहुत कम निभा करती हैं, और वो बच्चे जिनको मशरकी सोच से लड़कों को पाला जाता है ना, उनका हिसाब भी इससे अपोजिट होता है। तो बहरहाल इस पे लंबी बात की जरूरत इस वक्त नहीं है, लेकिन खुलासा बात का ये है कि तरबियत का फर्क है, लेकिन मुमकिन हो तो ये सब चीजें शादी के वक्त देखनी चाहिए। अब आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निकाह करवा दिया, हो गया, अब उस वक्त तो वो चुप रहे, जिसको आप कहते हैं ना कि बस किसी को ना नहीं कर सके। जैनब ने भी कर ली, उन्होंने भी कह दिया सब हाथे, लेकिन शादी के बाद के हालात क्या बन गए वो मुश्किल थे। हजरत जैनब के दिमाग में एक ख्याल था कि मैं आजाद घर से हूँ, खानदानी हूँ, और मेरा शौहर जो है गुलाम है। वो जो एक खूबसूरत ताल्लुक होता है ना रिश्तों का, वो नहीं बन पा रहा था। दूसरी तरफ हजरत जैद, बिजाहर तो देखिए कि नबी के घर में थे लेकिन थे तो गुलाम ही ना, उनके दिल में ये कॉम्प्लेक्स आ गया कि जैनब एक तो खूबसूरत बहुत थी, फिर दूसरी कुरैशी थी, फिर उसके बाद ये है कि इनके मिजाज में तमकनत थी, जरा थोड़ा सा बड़ापन था, एक लोगों में होता है आप जनाब वाला, तो जैद इनके साथ उस तरह खुल के नहीं मिलते थे जैसे शौहर बीवियों से मिलते हैं, झिझकते थे, तकल्लुफ था। आमतौर पर तो देखे ना मर्द रोब डालते हैं बाहर से, किधर गई थी, अब ये कह सकता है बेचारा जैद किधर गई थी, वो मर्द दब जाते हैं ना बीवियों से, तो कुछ हालात गड़बड़ थे, यानी जैद दबे हुए थे और जैनब डोमिनेंट थी, और बात पीछे वही थी जो कि आमतौर पर होती है, लिहाजा हालात सही नहीं थे। गाहे बगाहे दिन ब दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुद ही इनकी शिकायतें आ रही थी कि भाई वो मेरे साथ ऐसी हैं, वो ऐसे हैं, ये हालात चल रहे थे। अब अगली आयतों में देखिए कि कहानी कहाँ पहुंचती है। इतनी बात हो गई, शादी हो गई, लेकिन दोनों निभाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, हालात इतने बिगड़े कि आयत 37 देखिएगा, वैस तकूलू, और जब तुम कह रहे थे, तुम कौन हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख लीजिए, यानी आप कहते थे, अल्लाजी उस शख्स को, किसको, अन अमल्लाहु अलैह, जिस पर अल्लाह ने इनाम किया था, कौन, जैद, जैद पर अल्लाह ने इनाम भी किया था, वानमत अलैह, और आपने भी उन पर इनाम किया था। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाने को दिल चाहता है हजरत जैद की किस्मत पे, कि आप देखिए कि अल्लाह ने भी उन पर इनाम किया, और नवीन क्या इनाम था ये बाद में बताती हूँ। बहरहाल वो शख्स जिस पे बहुत ही इनाम हुए थे, आप उनको क्या कह रहे थे, यहां आप इन्वर्टेड कॉमास लगा लीजिए, हमसे कलई का, यानी जैसे बड़ी राजदारी से कोई कहते ना, रोके रखो उसको अपने पास, किसको, जौजा का, अपनी बीवी को, वत्तकिल्ला, और अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह के नबी चुपके चुपके एक अच्छे बाप की तरह जैद को समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, जैसे भी हालात हैं गुजारा कर लो, बीवी को रखे रखो, छोड़ो नहीं, और इस तरह के हालात हैं। अब हजरत जैद जहरे के नबी सल्लम को तो एक तो वैसे भी बताते थे, और दूसरी बात है कि आप नबी भी थे, और नबी होने के नाते भी तो हालात सामने आते हैं ना, तो हजरत जैद का ये कहना इतना खुफिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कुरान में लाकर दिखा दिया कि ऐसे वक्तों में जब बहू बेटे की ना बन रही हो, तो घर वालों को हर मुमकिन निभवाने की कोशिश करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों पे तोड़ दो, छोड़ दो, तुम कोई कम हो, तुम कोई तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हें खिला नहीं सकते, और तुम कोई तुम्हें और नहीं लड़की देगा, दोनों तरफों से जब फरीकैन मुदाखलत करते हैं ना तो घर टूटते हैं। ये जुमला लिख लें, 80% डाइवोर्सेस ना हो अगर फैमिलीज इन्वॉल्व ना हो, लड़की और लड़का, हस्बैंड और वाइफ लड़ रहे हैं तो इकट्ठा छोड़ दें, खुश हैं तो इकट्ठा छोड़ दें, उदास हैं तो इकट्ठे रहें, खुश हैं तो इकट्ठे रहें, लड़ रहे हैं, बेड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गुस्से में तेवरियां दिखा रहे हैं, एक इलाज है कि उन दोनों को अकेला छोड़ दो, दैट्स इट। जहां तीसरा बंदा आता है और दोनों तरफ की फिर चिड़ होती है, और बाद में होता क्या है, वो दोनों मिलना चाहते हैं तो ऊपर के नहीं मिलने देते, कभी भाइयों की गैरत का इशू बन चुका होता है, तो कभी लड़के की माँ का इशू बन चुका होता है। तो यहां से अमल की बात नोट कीजिए कि अल्लाह ताला के नबी ने उनको कहा कि नहीं, घर बनाई रखो, कोई हरज की बात नहीं है, ये होगा। और ये भी लिख लीजिए कि हजरत जैद जो थे ये कबीला कल्ब से ताल्लुक रखते थे, यानी थोड़ा देहाती कबीला था, और इनके वालिद का नाम हारिसा बिन शराहील था, और 8 साल की उम्र में ये अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल जा रहे थे, उस काफले पर दुश्मन ने हमला किया कबीले ने, और लूट मार में जिनको पकड़ा उनमें ये भी थे, और उकास के बाजार में जाकर इनको बेलचा, एक मेला लगता था वहां, हकीम बिन हिसाम ने खरीदा, फिर उन्होंने अपनी फुफ्फी हजरत खदीजा को दे दिया, और फिर नबी सल्लम को हज़रत खदीजा की तरफ से मिला। जब ये नबी सल्लम को मिले उस वक्त इनकी उम्र मुबारक 15 साल की थी, यानी अर्ली टीनेजर बॉय थे। एक बड़ा ही दिलचस्प वाक्य आता है कि ये कुछ अरसा भी नबी सल्लम के साथ रहे थे कि इनके बाप और चचा इनको ढूंढते हुए मक्का आ गए। लोगों ने बताया कि वो बच्चा तो उधर मोहम्मद सल्लम के पास है। खैर वो वहाँ पहुँच गए, जाके सारी कहानी सुनाई कि हम खानदानी लोग हैं, गुलाम नहीं है, अब ये बच्चा अलग हो गया था, आप जो लेना चाहें इसकी कीमत, यानी अगर आपने खरीदा ही है तो पैसों के लिए होगा, दें तो हम देने को तैयार हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को बुला ले और उस पर मर्जी है, वो जाना चाहे तो मैं उसको नहीं रोकूंगा। आपने उनको बुलाया, रोकूंगा भी नहीं, और अगर वो ना जाना चाहेगा तो ज़बरदस्ती भेजूंगा भी नहीं। तो वो बड़े खुश हुए कि ये तो बात ही अच्छी है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि बच्चा बाप और चचा के साथ ना जाना चाहे। खैर वो कहते हैं कि ठीक है, बुला लिया। हज़रत ज़ैद जब आए तो उनको पूछा कि बताओ तुम इनको जानते हो? उन्होंने कहा जी जानता हूँ। ज़ाहिर 7-8 साल का बच्चा जुदा हुआ था तो उसको पता होता है। कहा एक मेरे अब्बू और एक मेरे चचा हैं। कहा अच्छा, दोनों को जानते हो? आपने कहा ठीक है, अब तुम्हें पूरी आज़ादी है कि इनके साथ चले जाओ तो चले जाओ, और अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो रह दो। तो हज़रत ज़ैद ने बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के कहा, आपको छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। मैं कहती हूँ ये अखलाक है, ये अल्लाह हमें दे दे, ये किरदार था हमारे नबी का, यही आपकी बीवियों ने बाद में किया, आप ये सुन चुके हैं। एक दफ़ा जो नबी के साथ जुड़ जाता था वो कभी सोचता भी नहीं था कि मैं छोड़ूँ और मैं जाऊँ और दिस एंड दैट। तो उस पर फिर उनके माँ बाप ने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने हमारे बच्चे को इतना अच्छा रखा हुआ है तो फिर हमें क्या एतराज़ है, जब दिल चाहेंगे आएंगे। अब जब ये वाक्या हुआ तो फिर उस पर अल्लाह के नबी इनको हरम में ले गए और सबको जमा करके कहा कि आज से फिर ज़ैद आज़ाद हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से मुझे चूज़ किया है, तो आज से ये मेरा बेटा है और ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारा जाने लगा। लेकिन ये सारे चूँकि नबूवत से पहले के वाक़ियात हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सब मामलात बदले। और ये उन खुशकिस्मत 4 लोगों में से हैं जिनको बिल्कुल इब्तदाई वही के दौर में ही इस्लाम कबूल करने की तौफीक हुई। गुलामों में सबसे पहले इन्होंने ईमान कबूल किया हज़रत ज़ैद थे, हज़रत खदीजा थी, हज़रत अली और चौथे अबू बकर थे। और उस वक्त हज़रत ज़ैद की उम्र मुबारक 30 साल की थी, 15 साल आपके साथ रह चुके थे। हिजरत के बाद 4 हिजरी में आपने इनका निकाह हज़रत ज़ैनब से किया और उनका महर किया और वो सारी चीज़ें जो कर दी। तो अल्लाह के नबी ने आप पर क्या इनाम किया था? नंबर 1, आपको आज़ाद किया था, बेटा बनाया था। फिर आपकी शादी एक आज़ाद घराने में एक अच्छी औरत के साथ करवाई। फिर आपका हक महर भी दिया। फिर आपको इज्जत भी दी। और अल्लाह ने क्या इनाम किया था ज़ैद पे? कि उनका नाम कुरान में दे दिया और उनके ज़रिए से एक रस्म तुड़वाई। और इसी तरह से दूसरी सारी कहानियाँ जो हैं हमारे सामने आ गई। तो गोया कि ये पता चल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की तरफ से ये बात वाकई इनकी ख़ास बात लगती है, दूसरी तरफ से नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि जब इन्होंने ये कहा कि अल्लाह के नबी मैं ज़ैनब को छोड़ना चाहता हूँ, तो अल्लाह के नबी ने एकदम ये क्यों कह दिया कि हमसे कल एक ही ज़ौज अपनी बीवी को रोक के रख? क्या इस्लाम किसी को फोर्स करता है? तो फोर्स नहीं करता। अल्लाह के नबी ने हुक्म नहीं दिया, मशवरा दिया और रास्ता बताया, और यही रास्ता आपने अपनी उम्मत को भी बताया। हदीस में आता है कि जब तुम में से किसी को अपनी बीवी पसंद ना हो, कोई उसकी बात तुम्हें नागवार गुजरे, तो उस चीज़ को देख ले उसमें जो अच्छी है, बुरी को छोड़ो अच्छी देख लो। आज के मर्द अगर ये चीज़ देखने लग जाए, और आज की औरतें अगर यही चीज़ देखती रहें, तो किसी घराने में खराबी ना होगी। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वतुख्फी फी नफ्सिकम अल्लाहु मुबदीहि, और आप अपने दिल में छुपाए हुए थे वो बात जिसे अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था। वतख्शन नासा, और आप तो लोगों से डर रहे थे। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शाहु, जबकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि आप उससे डरे। अब ये क्या बात, ये नबी क्या छुपा रहे थे? अब इसके बारे में समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने वही के जरिए नबी सल्लम को ये बात पहले से बता दी थी कि ये रस्म के मुंह बोले बेटे की बीवी तलाक के बाद उस मर्द पे हलाल है, इतनी पक्की जड़ों में जा चुकी है अरब की कि इसको किसी सहाबी के जरिए भी नहीं तोड़वाया जा सकता। इसको आपकी जात से तोड़वाना है, और इसको तोड़ने के लिए अल्लाह ने बता दिया था कि ज़ैद जब तलाक दे देंगे ज़ैनब को, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे निकाह करना पड़ेगा। ये सोच के आप कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी का दिल बैठा जा रहा था कि जो लोग पहले ही मेरे ऊपर इतना कीचड़ उछालते हैं, पहले ही इतनी बातें करते हैं, जब मैं जैनब से निकाह करूंगा तो फिर हालात क्या होंगे। आप सोचे ना, एक दीनदार अल्लाह से डरने वाला, कोई ऐसे हालात हो जिसमें फितने का डर हो, तो वो तो जान पे आ जाएगी उसके कि मेरी तो बदनामी छोड़ो, दीन की बदनामी होगी। एक तो गम ये था हजरत जैनब से निकाह में कि ये मुंह बोले बेटे की बीवी थी, दूसरा एक और मसला भी था, वो भी अभी समझ लें, कि इससे पहले नबी सल्लम की चार बीवियां मौजूद थी और ये पांचवी बीवी थी। तो ये तो कह लेना जलती पे तेल। मुनाफिक, और जो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह अल्लाह के नबी के चलते फिरते भी कदम भी गिनते थे और आपके लुकमे भी गिनते थे, उनको तो ऐसे गोया कि एक इशू मिल जाना था कि वाह वाह देखो, हा हा देखो कि ये तो क्या कर रहे हैं और दिस एंड दैट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इसका तस्करा करते हैं कि हमें पता है आपके दिल में ये खौफ है, लेकिन वल्लाहु हक्कु अन तख्शाहु। बताइए, अगर अल्लाह के नबी ने खुद कुरान लिखा होता या खुद शरीयत वजह की होती तो आप खुद इस मसलक में पढ़ते? कभी ना पढ़ते। तो ये आजमाइश है, ये नबी की वो आजमाइश है जो हर एक की आम तौर पे नहीं होती, लेकिन ये होता है। ये है असल में कि ज़ाक़द अल्लाह व रसूलहु अमरन, मानना पड़ता है। नबी को भी अल्लाह की इतनी बातें माननी पड़ी जो किसी इंसान की समझ में भी आने वाली नहीं थी। दूसरी बात, यहां से पता चलता है कि बशर होने के नाते लोगों का डर इस बात का कि प्रोपेगंडा होगा, फितना होगा, ये बशरी बात है। ये कोई लोगों का खौफ वो वाला नहीं है जो मुझे और आपको होता है कि हमने बरात को खाना ना अच्छा खिला दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, या अगर हमने शादी की रस्में ना की तो लोग बातें करेंगे। नहीं, यहां डर किस चीज का था? प्रोपेगंडे का, मनफी प्रोपेगंडा, नेगेटिव प्रोपेगंडा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि डोंट वरी, जो होना है वो तो होगा, तो हुआ वही जिसका डर था। फलम्मा कदा ज़ैदु मिन्हा वतरा, और जब जैद ने इससे अपना ताल्लुक मुनक़ते कर लिया, बाज़ कहते मुनक़ते कर लिया और बाज़ यानी शादी हो गई उसकी तरफ इशारा, वतर से, तो क्या हुआ? ज़वजना कहा, तो हमने उसका निकाह कर दिया या उसको ब्याह दिया आपसे। अब अगर आपको मैं तो कहूंगी दे दें पेपर में ये लफ्ज, आपको कभी ना भूले, तर्जमे के लिए लफ्ज आ जाए अगर रूट वर्ड्स में, जवज ना का हा, कितने लफ्ज हैं? जवज ना का हा, चार लफ्ज आएंगे इसके तर्जमे में। जवज ना, हमने ब्याह किया, का तेरा, हा उससे, हमने तेरा निकाह या ब्याह उससे कर दिया। तो इतनी लंबी कहानी इस छोटी सी बात में भेज दी, क्यों दे दिया निकाह में आपके उनको? लिकै ला यकूना अलल मोमिनीना हरज, ताकि मोमिनों के लिए इनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी ना रहे। हरज कांटे को कहते हैं, चुबन। मुराद ये कि मोमिनों को अपने मुंह बोले बेटों की छोड़ी हुई बीवियों से निकाह करने में कोई तंगी ना रहे। इज़ा कदउ मिनहुन्न वतरा, जबकि वो उनसे अपना ताल्लुक बिल्कुल काट लें। यदि या पीछे भी गुजरा ना, दी यन की जमा, यानी जैसे नबी से अंबिया होते हैं ना, इसी तरह दी एक मुंह बोला बेटा पुकारा हुआ जमा में आ गया कि अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों से निकाह करने में कोई ताल्लुक ना हो। और वकान अल्लाह अमरन मफूला, और अल्लाह का फैसला तो हो के रहने वाला है, ये तो हो गई और इसमें कोई हरज भी नहीं है, क्योंकि आयत नंबर 38, मा कान अला नबी मिन हरज, नबी पर कोई मज़ायका नहीं, नो हार्म, नो प्रॉब्लम, किसमें? फी मा फरद अल्लाह लहू, इस बात में जो अल्लाह ने उसके लिए फर्ज कर दी, क्योंकि सुन्नत अल्लाह फिल लजीन खलौ मिन कब्ल, अल्लाह का यही तरीका रहा है इन लोगों के बारे में भी जो पहले गुजर चुके हैं, यानी पहले नबियों के साथ भी अल्लाह का यही तरीका था। क्या तरीका था? यही कि जब अल्लाह कोई उन पर चीज फर्ज कर देता तो उनको माननी होती, क्योंकि वकान अमरुल्लाह कदरन मकदूरा, अल्लाह का फैसला कतई तय शुदा है।